आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांडला के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के भारत के पहले प्लांट की सताइश की है। फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों की रिवायती मौसीकी का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़द होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू और कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से मुअत्तल कर दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक की मालियाती पॉलिसी की कमेटी रेपो रेट में कटौती करने के बारे में आज अपनी 3 रोजा मीटिंग शुरू करेगी। और क्रिकेट में लंदन में ओवल के मकाम पर भारत और इंग्लैंड के दरमियान एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट सनसनीखेज मरहले में पहुंच गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कांडला कस्बे के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्लांट का आगाज किए जाने पर इसकी पायदारी की जानिब एक अहम कदम के तौर पर सताइश की है। ये प्लांट पहला मेक इन इंडिया प्लांट है। जनाब मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि ये एक काबिले तारीफ कोशिश है जिससे पायदारी को तकवीत मिलती है और मुजरे सेहत गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के हमारे विजन को इस्तेकाम हासिल होता है। अब कांडला ऐसी पहली भारतीय बंदरगाह बन गई है जिसमें मेगावाट सतह का मुल्क में ही तैयार किया गया माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्लांट मौजूद है, जिससे काबिले तजदीद तवानाई और पायदार बुनियादी ढांचे में गुजरात के बढ़ते हुए रोल की अहमियत का इजहार होता है। एक रिपोर्ट।
मरकजी वजीर सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया। इस प्रोजेक्ट से बंदरगाह के माहौल के लिए साजगार बुनियादी ढांचे के शोबे में भारत की तरक्की उजागर होती है। इस प्लांट को महज 4 महीने में तामीर किया गया है और ये 10 मेगावाट के माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है। इस प्रोजेक्ट का ऐलान वजीर आजम ने मई 2025 में किया था। इस प्लांट में सालाना 140 मेट्रिक टन हाइड्रोजन तैयार करने की सलाहियत है, जो मुजरे सेहत गैसों के अखराज को मुकम्मल तौर पर खत्म करने के भारत के सफर में एक अहम कदम है। दीनदयाल पोर्ट भारत की ऐसी पहली बंदरगाह बन गई है जहां मेगावाट सतह के ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट में काम काज शुरू कर दिया गया है। इस प्लांट को पूरी तरह भारतीय इंजीनियरों ने तैयार किया है और इसे माहौल के लिए साजगार तवानाई के शोबे में आत्मनिर्भर भारत का एक मेयार कायम होता है। अहमदाबाद से अपर्णा खुंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
फिलीपींस के सदर फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर आज सुपहर भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर नई दिल्ली पहुंच रहे हैं। उनके हमरा खातून अव्वल लुइस अरनिटा मार्कोस, काबीना के वजरा, अहम शख्सियतों और सीनियर एहलकारों के अलावा कारोबारी नुमाइंदों समेत एक आला सतह का वफद भी भारत आ रहा है। फिलीपींस के सदर का ओहदा संभालने के बाद सदर मार्कोस का भारत का यह पहला दौरा होगा। अपने दौरे में वजीर आजम नरेंद्र मोदी और सदर मार्कोस कल बाहमी सतह पर मुजाकरात करेंगे। सदर मार्कोस सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर भी इस दौरे में सदर मार्कोस से मिलेंगे। सदर मार्कोस अपने मुल्क लौटने से पहले बेंगलुरु भी जाएंगे। एक रिपोर्ट।
भारत और फिलीपींस के दरमियान सिफारती ताल्लुकात नवंबर 1949 में कायम हुए थे। तब से ही दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत, सरमायाकारी, दिफा, सिक्योरिटी, ज़रात, हिफ़्ज़ान सेहत, दवा साजी और डिजिटल टेक्नोलॉजी समेत स्पेक्ट्रम के शोबों में मजबूत शराकतदारी हुई है। दोनों मुल्क आसियान के साथ भारत की जामे करीदी साझेदारी के जरिए इलाकाई सतह पर मिलकर काम कर रहे हैं। फिलीपींस के साथ भारत के ताल्लुकात भारत के मशरक नवाज पॉलिसी विजन महासागर और भारत बहरुल काहिल विजन की एक अटूट पॉलिसी का हिस्सा है। सदर मार्कोस दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात कायम होने के 75 साल पूरे होने के मौके पर भारत का दौरा कर रहे हैं। ये दौरा मुस्तकबिल के बाहमी ताउन की राह हमवार तय करने के लिए दोनों रहनुमाओं को एक मौका फराहम करेगा और दोनों रहनुमा आपसी मफाद के इलाकाई और बैन अलाक़वामी उमूर पर बातचीत करेंगे। अक्षित की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
बिम्स्टेक की रिवायती मौसीकी का अब तक का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनक़द होगा। वजीर खारजा डॉ एस जयशंकर इस म्यूजिक फेस्टिवल का इफ्तिताह करेंगे। मौसीकी की इस तकरीब में भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, نیپال، سری لنکا اور تھائی لینڈ اپنی اپنی موسیقی سے لوگوں کو محسوس کریں گے۔ اس فیسٹیول کا اہتمام انڈین کونسل فار کلچرل ریلیشنز آئی سی سی آر نے کیا ہے اور اسے سپت سر سیون نیشنز ون میلڈی یعنی سات سر سات ملک ایک آہنگ کا عنوان دیا گیا ہے۔ فیسٹیول میں بمسٹیک سے تعلق رکھنے والے سات ملکوں کی الگ الگ روایتی موسیقی پیش کی جائے گی۔ یہ ثقافتی پہل اس سال اپریل میں تھائی لینڈ میں بمسٹیک سربراہ کانفرنس میں وزیراعظم نریندر مودی کے اصرار پر کی گئی ہے، جس میں بمسٹیک ملکوں کا روایتی موسیقی کا سب سے پہلا فیسٹیول بھارت میں منعقد کر کے علاقائی ثقافتی رشتوں کو مضبوط بنانے کے بھارت کے عزم کا اظہار کیا گیا تھا۔ یہ فیسٹیول سبھی کے لیے مفت ہے۔ فیسٹیول میں بیٹھنے کی سہولت پہلے آؤ پہلے پاؤ کی بنیاد پر فراہم ہوگی۔ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ شام 6 بجے تک اپنی نشست اختیار کر لیں۔ بھارت کے انتخابی کمیشن نے راشٹریہ جنتا دل آر جے ڈی کے رہنما اور بہار کے سابق وزیر اعلی تیجسوی پرساد یادو سے کہا ہے کہ وہ اپنے اس ووٹر شناختی کارڈ کی تفصیلات پیش کریں جو انہوں نے ایک پریس کانفرنس میں دکھایا تھا۔ ان پر الزام ہے کہ ان کے پاس 2 ووٹر فوٹو شناختی کارڈز ایپکس موجود ہیں۔ بہار میں دیگا اسمبلی حلقے کے چناؤ رجسٹریشن افسر نے کہا ہے کہ جناب یادو نے ہفتے کے روز ایک پریس کانفرنس میں جو ووٹر شناختی کارڈ دکھایا تھا وہ انتخابی کمیشن کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا ہے۔ بی جے پی نے الزام لگایا ہے کہ آر جے ڈی رہنما تیجسوی یادو نے 2 ووٹر شناختی کارڈز رکھ کر ایک جرم کا ارتکاب کیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ ان کا ووٹر شناختی کارڈ نمبر، جس کا ذکر انہوں نے پریس کانفرنس میں کیا تھا، سرکاری طور پر جاری کیے گئے نمبر سے الگ ہے۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں سے بات کرتے ہوئے بی جے پی کے ترجمان سمبت پاترا نے پوچھا کہ کیا جناب یادو نے انتخابی کمیشن کو غلط معلومات فراہم کی تھیں۔
سروچ نیتا کے ہیں 2 ایپک کارڈ تو کاریکرتا کا حال کیا ہوگا؟ کیا اسی لیے یہ ایس آئی آر سے ڈرتے ہیں؟ تو سوچئے آر جے ڈی کے، کانگریس کے جو تمام لوگ عادی ہو گئے تھے گنڈا گردی کے آدھار پر ووٹ پانے کے اور چناؤ جیتنے کے، کیا انہوں نے یہ 2-2 فرضی ووٹر کارڈ بنا کر کے جو رکھا ہوا تھا، کہیں ان کے پورے کھیل پہ پانی تو نہیں پھر گیا ہے؟
یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ بھارتی ریزرو بینک کی مالیاتی پالیسی کا کمیٹی ایم پی سی آج ریپو ریٹ میں کٹوتی سے متعلق اپنی 3 روزہ میٹنگ آج سے شروع کرے گی۔ آر بی آئی کے گورنر سنجے ملہوترا کی صدارت میں کمیٹی کے فیصلے کا اعلان بدھ کو کیا جائے گا۔ بھارتی اسٹیٹ بینک کی ایک رپورٹ کے مطابق آر بی آئی اپنی مالی پالیسی کے تحت ریپو ریٹ میں 0.25 پوائنٹس کی کٹوتی کر سکتا ہے، جس کا مقصد دیوالی سے پہلے قرضوں کو فروغ دینا ہے۔ ایس بی آئی کی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ دیوالی سے پہلے بدھ کے روز کی جانے والی اس کٹوتی کی وجہ سے قرضوں کو فروغ حاصل ہونے کے سبب دیوالی کی خوشیاں پہلے سے ہی شروع ہو سکتی ہیں۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ پچھلے اعداد و شمار سے اس واضح رجحان کا پتہ چلتا ہے کہ دیوالی سے پہلے ریپو ریٹ میں کی گئی کمی کی وجہ سے تہواروں کے دنوں میں قرضوں کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بھارت کے اسمارٹ فون کی برآمدات مالی سال 2025-26 کی پہلی سہ ماہی میں ریکارڈ اونچائی پر پہنچ گئیں، جو 7.72 کروڑ ڈالر رہیں۔ یہ برآمدات پچھلے سال کی اسی مدت کے دوران 4.90 کروڑ ڈالر تھیں۔ اس طرح اسمارٹ فون کی برآمدات میں 58% کا اضافہ ہوا۔ رپورٹس کے مطابق ایپل انکارپوریشن کی برآمدات سب سے زیادہ 6 ارب ڈالر رہیں، جو پچھلے سال کے مقابلے 82% زیادہ ہیں۔ اس سہ ماہی کے دوران جو سبھی اسمارٹ فون برآمد کیے گئے ہیں ان میں سے آئی فون کا حصہ تقریباً 78% رہا۔ بھارت نے مالی سال 2021 میں 3.10 ارب ڈالر مالیت کے اسمارٹ فون برآمد کیے تھے۔ 2025 تک یہ رقم 24.10 ارب ڈالر تک پہنچ گئی، جس میں ایپل فون کا حصہ 17.50 ارب ڈالر رہا ہے۔ دیگر اہم برآمد کار کمپنیوں میں پیجٹ الیکٹرانکس بھی شامل ہے، جو ڈکسن ٹیکنالوجیز کی ایک ذیلی کمپنی ہے۔ اس کمپنی نے 17.50 کروڑ ڈالر مالیت کے اسمارٹ فونز اور سیمسنگ کمپنی نے اسمارٹ فون کی کل برآمدات کے 72% فون برآمد کیے۔ اس تیزی سے اضافے کا سہرا پیداوار کے لیے دی جانے والی ترغیبات پی ایل آئی اسکیم کے سر ہے، جس کا آغاز 2020 میں کیا گیا تھا۔ اس اسکیم کی وجہ سے مقامی طور پر مینوفیکچرنگ کو کافی زیادہ فروغ حاصل ہوا۔ دلی اسمبلی کا مانسونی اجلاس آج شروع ہوگا۔ 5 دن تک چلنے والا یہ اجلاس اس ماہ کی 8 تاریخ تک جاری رہے گا۔ مانسون اجلاس کے پہلے دن وزیر اعلی ریکھا گپتا 2 اہم کنٹرولر اور آڈیٹر جنرل سی اے جی رپورٹس پیش کریں گی۔ पहली रिपोर्ट माली साल 2023-24 के लिए रियासती मालिये पर होगी, जबकि दूसरी रिपोर्ट साल 2023 के लिए इमारत और दीगर तामीरी काम करने वाले मजदूरों की बहबूद से मुतालिक है। डिप्टी स्पीकर मोहन सिंह बिष्ट और चीफ व्हिप अभय वर्मा बिजनेस एडवाइजरी की दूसरी रिपोर्ट पेश करेंगे। दूसरी जानिब दिल्ली के तालीम के वजीर आशुष सूद भी आज दिल्ली के स्कूल के तालीम से मुतालिक बिल 2025 पेश करेंगे। उत्तर प्रदेश में लगातार बारिश से कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसकी वजह से 17 जिलों में सैलाब आ गया है। हुक्काम इंतहाई चौकन्ना हैं और मुतासिरा इलाकों में बचाव और राहत का काम जारी है। तफसील हमारे नमानिगार से।
उत्तर प्रदेश में 37 तहसीलों और 410 गांवों में सैलाब से 84,000 से ज्यादा लोग मुतासिर हुए हैं। रिलीफ कमिश्नर भानु चंद्र गोस्वामी ने बताया कि इस वक्त 17 जिलों कानपुर नगर, लखीमपुर खीरी, आगरा, औरैया, चित्रकूट, बलिया, बांदा, गाजीपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, इटावा और फतेहपुर को सैलाब का सामना है। राहत और बचाव का काम बड़े पैमाने पर जारी है, जबकि एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पीएसी के जवान मुसलसल गश्त कर रहे हैं। सैलाब से अब तक 343 घरों को नुकसान पहुंचा है और 4015 हेक्टेयर की जमीन भी मुतासिर हुई है। वजीर आला योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में सैलाब की सूरत हाल पर गहरी नजर रख रहे हैं। उनकी हिदायत पर रियासती उजरा मुतासरा इलाकों का मुआयना कर रहे हैं। लखनऊ से ओम अवस्थी की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
उत्तराखंड के मुख्तलिफ हिस्सों में कल शाम से बारिश की वजह से बड़े दरियाओं में पानी की सतह में इजाफा हुआ है, जबकि पहाड़ों में झरने तुगयानी पर हैं। इसी दौरान रुद्रप्रयाग जिले में लगातार बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा आरजी तौर पर मुअत्तल कर दी गई है। हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों समेत राजधानी शिमला में रुक रुक कर लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मामूलाते जिंदगी मुतासिर हुए हैं। अब तक रियासत से बादल फटने के 28, अचानक सैलाब आने के 53 और मिट्टी के तोदे खिसकने के 47 वाकयात की इत्तलात मौसूल हो चुकी हैं। महकमे मौसमियात ने आज रियासत के बहुत से हिस्सों में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नज़र ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने 9 अगस्त तक रियासत में ख़राब मौसम की पेशगोई की है। भारत के महकमे मौसमियात IMD ने अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मेघालय, बिहार, हिमाचल प्रदेश, केरला, माहे, मगरबी बंगाल, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज शदीद से बहुत शदीद बारिश की पेशगोई की है। जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम के रास्तों से श्री अमरनाथ जी यात्रा मुअत्तल कर दी गई है। एक बयान में कश्मीर के डिविजनल कमिश्नर विजय कुमार भदौरी ने कहा है कि हालिया शदीद बारिश की वजह से बालतल और पहलगाम के रास्तों पर मरम्मत और रखरखाव का काम जरूरी है। क्रिकेट में लंदन के ओवल मैदान में एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का 5वां टेस्ट का आखिरी दिन सनसनी खेज मरहले में दाखिल हो गया है। मेजबान इंग्लैंड आज आखिरी दिन 6 विकेट के नुकसान पर 339 रन से अपनी दूसरी इनिंग्स फिर से शुरू करेगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात की 6 सुर्खियां एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। अखबार प्रताप ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी की एक सोशल मीडिया पोस्ट के हवाले से सुर्खी लगाई है, ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को मुल्क अहमियत देता है। उन्होंने दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी कांडला में मुल्क के पहले मकामी ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट को काबिले सताइश कोशिश करार दिया। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा ने वजीर आजम मोदी की सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की खबर को सफे अव्वल पर जगह दी है। हिंदुस्तान एक्सप्रेस समेत दीगर अखबारों ने गोंडा में अलमनाक सड़क हादसे में 11 मुसाफिरों की मौत की खबर को नुमायां तौर पर शाया किया है। अखबारात की एक और सुर्खी है, इजरायली हमले में 50 से ज्यादा फलस्तीनी हलाक, सैकड़ों जख्मी। राष्ट्रीय सहारा ने ईरान के इस मौकिफ को अपनी सुर्खी बनाया है कि ट्रंप के यूरेनियम अफजूदगी रोकने के मुतालबे तक कोई मुआयदा नहीं होगा।
और आखिर में खास खबर एक बार फिर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कांडला के पोर्ट सेक्टर में माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन के भारत के पहले प्लांट की सताइश की है। फिलीपींस के सदर फर्डिनैंड आर मार्कोस जूनियर भारत के 5 रोजा सरकारी दौरे पर आज नई दिल्ली पहुंचेंगे। बिम्स्टेक मुल्कों की रिवायती मौसीकी का पहला फेस्टिवल आज शाम नई दिल्ली में भारत मंडपम में मुनाकिद होगा। श्री अमरनाथ जी यात्रा जम्मू कश्मीर में बालतल और पहलगाम दोनों रास्तों से मुअत्तल कर दी गई है। RBI की मालियाती पॉलिसी की कमेटी रेपो रेट में कटौती करने के बारे में आज अपनी 3 रोजा मीटिंग शुरू करेगी। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।